अध्याय 12 वेदों में विज्ञान के सूत्र। वेदों में अनेक विज्ञान के सूत्र प्राप्त होते हैं, ये बिखरे हुए हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट संदर्भ दिए जा रहे हैं, विस्तार भय से इनकी व्याख्या नहीं दी जा रही है। एक, सूर्य न उदय होता है न अस्त। ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि सूर्य न उदय होता है और न अस्त। सूर्य अपने स्थान पर रुका है, पृथ्वी उसका चक्कर काटती है। इसी आधार पर दिन के अंत को सूर्यास्त और रात्रि के अंत को सूर्योदय कहा जाता है। क, स वा एष आदित्यः न कदाचनास्तमेति नोदेति। ख, स वा एष कोष्ठक में आदित्यः न कदाचनास्तमयति नोदयति। दो, पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद का कथन है कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। पृथ्वी शाह सूर्य सूक्ष्ण के चारों ओर घूमती है। यजुर्वेद का भी कथन है कि यह पृथ्वी गौह अंतरिक्ष रूपी माँ के सामने रहती हुई पिता रूपी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षाह सुष्णम परि प्रदक्षिणित। ख, आयम गौ पृथ्वीर क्रमिद असदन मातरम पुरह पितरम च प्रयन स्वह। तीर, सूर्य और सारा संसार घूमता है। यजुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी सूर्य और सारा संसार निरंतर घूमता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति का प्रत्येक परमाणु निरंतर चक्कर काट रहा है। समा ववर्ति पृथ्वी समुषाह समु सूर्य समु विश्वमिदम जगत। चार, सूर्य से चंद्रमा में प्रकाश। यजुर्वेद का कथन है कि सूर्य की सुषुम्नाह नामक किरण चंद्रमा को प्रकाशित करती है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, यास्त ने भी निरुक्त में इस बात की पुष्टि की है। क, सुषुम्नाः सूर्य रश्मिश चंद्रमा गंधर्वः अथाप्यस्यैको रश्मिश चंद्रमसं प्रतिदीप्यति आदित्यो यतो अस्य दीप्तिर्भवति। पांच, सूर्य संसार की आत्मा है। ऋग्वेद आदि में कहा गया है कि सूर्य चर अचर जगत की आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य ही संसार की ऊर्जा का स्रोत है, वही सबको गति दे रहा है। सूर्य आत्मा जगतस्थूषश्च। छह, सूर्य अनेक हैं। ऋग्वेद में नाना सूर्याह और सप्त आदित्याह के द्वारा अनेक सूर्यों का उल्लेख है। सप्त दिशो नाना सूर्याह देवा आदित्या ये सप्त। सात, सात महासूर्य। अथर्वेद में उल्लेख है कि ब्रह्म में सात सूर्य एक साथ रहते हैं। केंद्रीय सूर्य को कश्यप कहा है। तैत्तरीय आरण्यक में इन सात सूर्यों के नाम आरोग व्रास पतंग स्वर्णर विभाव आदि दिए हैं। कश्यप यस्मिन सूर्या अर्पिताः सप्त साकम। आठ, सूर्य में धब्बे हैं। ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य के चक्षु मंडल घेरा रजस से युक्त है। सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतम्। नौ, सूर्य के चारों ओर विशाल गैस। ऋग्वेद में दीर्घतमस ऋषि का कथन है कि मैंने योग दृष्टि से देखा है कि सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है। शकमयम धूमम आराध अपश्यम विषुवता पर एनावरेण। दस, सूर्य की किरणें सात रंग की। अथर्वेद में वर्णन है कि सूर्य की सात रंग की किरणें हैं, यही वर्षा के कारण हैं। अवदिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मय आपः समुद्रियाधाराः। ग्यारह, सूर्य की किरणें पदार्थों को रंग देती हैं। अथर्वेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणें संसार के सभी पदार्थों को रंग देती हैं। ये सात गुणे तीन बराबर 21 प्रकार की हैं, अर्थात सात किरणें उच्च मध्यम और निम्न होकर 21 प्रकार की हो जाती हैं। इनसे सारे रंग बनते हैं। ये त्रिशप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विभ्रतः। बारह, सूर्य में सोम। अथर्वेद में वर्णन है कि सूर्य की ऊर्जा का आधार सोम अर्थात हाइड्रोजन है। सोम से सूर्य को शक्ति मिलती है। यजुर्वेद में इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंत्र का कथन है कि सूर्य में दो तत्व मिलते हैं। एक, अपाम रसम जल का सार भाग जो ऊर्जा के रूप में है। उद्वयस शब्द जल के ऊर्जा रूप हाइड्रोजन के लिए है। दो, अपाम रसस्य यो रसः, अर्थात जल के सार भाग का सार भाग, जल का सार हाइड्रोजन है और उसका सार भाग हीलियम है। हाइड्रोजन के लिए अपाम रसः और हीलियम के लिए अपाम रसस्य यो रसः, इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। सूर्य संतम समाहितम से स्पष्ट है कि ये दोनों सूर्य में विद्यमान हैं। अपाम रसम उद्वयसम सूर्य संतम समाहितम, अपाम रसस्य यो रसस्तम वो गृहणाम्युत्तमम। 13, सूर्य की किरणों से विद्युत प्रवाह। ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणों के साथ मित्र और वरुण एक ही रथ पर बैठकर चलते हैं। मित्र शब्द धनात्मक आवेश और वरुण ऋणात्मक आवेश के लिए है। ये दोनों मिलकर विद्युत प्रवाह करते हैं। इनसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रवाहित होती हैं। इन तरंगों के द्वारा प्रवाहित शक्ति के लिए दूत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस दूत को अति तीव्रगामी कहा गया है। इस मंत्र में अजीर शब्द बहुत सक्रिय अर्थ को बताता है और मदे रघु शब्द अति तीव्रता को बताता है। इस ऊर्जा में चुंबकत्व के लिए अयह शीर्षा चुंबकत्व शक्ति संपन्न शब्द आया है। क, मित्रा वरुणा रथर्यतः साकम सूर्यस्य रश्मिमभिः। ख, यो वम मित्रा वरुणा जिरो दूतो अद्रवत अयह शीर्षा मदे रघु। 14, सौर ऊर्जा। ऋग्वेद और यजुर्वेद में सौर ऊर्जा के आविष्कार और सफल प्रयोग का श्रेय त्रित को दिया गया है। त्रित में ये तीन देवता हैं, इंद्र, गंधर्व और वसु। इंद्र ने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, गंधर्वों ने इसका परीक्षण किया और वसुओं ने इसका सफल प्रयोग। सुरात, सूर्य से, अश्वम, अश्व शक्ति, सौर ऊर्जा को वसवह विशेषज्ञों ने निरतष्ट निकाला। त्रित एनम आयुनक इंद्र एडम प्रथमो अध्यतिष्ठत गंधर्वो अस्य रसनाम अग्रिम्भणात सूरादश्वम वसो निरतष्ट। 17, परमाणुओं में आकर्षण शक्ति। ऋग्वेद में उल्लेख है कि प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं को सदा आकृष्ट करते हैं। एको अन्य चक्रशे विश्वम अनुशक, अर्थात एक प्रत्येक परमाणु अन्यत विश्वम अन्य सभी परमाणुओं को आनुशक निरंतर चक्रशे अपनी ओर खींचता है। 18, द्रव्य और ऊर्जा का रूपांतरण। प्रोफेसर आइंस्टाइन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि द्रव्य और ऊर्जा में से कोई भी चीज नष्ट की जा सकती है और न उत्पन्न की जा सकती है, केवल इनका रूपांतरण होता है। ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित होती है और द्रव्य ऊर्जा में। इसका सूत्र है E=mc²। इसमें E ऊर्जा एनर्जी के लिए है, M मास द्रव्य के लिए है और C स्पीड ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की गति के हैं। ऋग्वेद में इसी अभिप्राय का एक मंत्र है कि अदिति अनश्वर प्रकृति द्रव्य मास मैटर से दक्ष ऊर्जा अर्थात एनर्जी उत्पन्न होता है तथा दक्ष से अदिति मास मैटर। इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्य और ऊर्जा परस्पर रूपांतरित हो सकते हैं, अर्थात द्रव्य से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्य। अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद उ अदिति परि। 19, अग्नि और सोम से विश्व की रचना। बृहज्जाबाल उपनिषद में वर्णन है कि यह सारी सृष्टि अग्नि और सोम से बनी है। अग्नि धनात्मक तत्व है, यह प्रेरक संचालक और गतिदाता है। सोम ऋणात्मक तत्व है, अतः सोमीय तत्व में गतिशीलता आती है, इसी से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्य और अग्नि धनात्मक हैं तथा सोम और वायु ऋणात्मक हैं। उपनिषद में धनात्मक को तेज और ऋणात्मक को रस नाम दिया है। इस तेज और रस के मेल से संसार बनता है। क, अग्नि सोमात्मकम जगत। ख, तेजो रस विभेदयस्तु वृत्तमेत चराचरम। 20, ऊर्जा विश्वव्यापी है। वेदों के अनेक मंत्रों में उल्लेख है कि अग्नि पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूलोक विद्युत वायु आदि सभी में व्याप्त है। इससे ज्ञात होता है कि विश्व के प्रत्येक कण में ऊर्जा प्रकट या सुप्त रूप में विद्यमान है। इसीलिए जहां भी घर्षण होता है वहां विद्युत उत्पन्न होती है। क, आरोदसी भानुना भात्यंतः। ख, दिवं पृथ्वी मनु अंतरिक्षम ये विद्युतम अनुसंचरन्ति ये दिक्ष्वंतर ये वाते अंतस्तेभ्यो अग्निभ्यः। 21 ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऋग्वेद में अग्नि के अनेक रूपों का उल्लेख है, परंतु इनके नाम नहीं गिनाए हैं। यजुर्वेद में समुद्री अग्नि, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पार्थिव ऊर्जा, आकाशीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, वृक्ष आदि से उत्पन्न ऊर्जा का उल्लेख मिलता है। क दिवस परिप्रथमं द्वितीयं जात वेदाः तृतीयं मप्सु। ख समुद्रे त्वा अप्सु अन्तः तृतीये रजसी। ग आरोदसी भानुना भान्ति अन्तः। 22 ऊर्जा अविनाशी है। यजुर्वेद का कथन है कि अग्नि अमर और अक्षय है, इसमें वयस है, अतः यह अमर है। क अग्निरमृतो अभवद् वयोभिः मर्तेषु अग्निरमृतो निधायी। 23 ऊर्जा अग्नि के विविध स्रोत। वेदों में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का उल्लेख मिलता है। क जल, पत्थर, वनस्पति, औषधियां। ख भूगर्भीय अग्नि। ग सूर्य, समुद्र और जल। घ नदियों के भवर। ग नदियों के संगम और प्रवाह। च सूर्य, समुद्र और वायु। छ खान, भूगर्भ और जल प्रपात। 24 अथर्वा ऋषि के तीन आविष्कारक। अथर्वा विश्व के प्रथम आविष्कारक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तीन आविष्कार किए। ये हैं, एक अरणी मंथन से अग्नि, अरणी नामक वृक्ष की लकड़ियों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न की। क अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथत अग्ने। ख अरण्य और निहितो जात वेदाः। दो जल मंथन से अग्नि। ऋग, यजुः और सामवेदों में उल्लेख है कि अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल के मंथन से जलीय विद्युत का आविष्कार किया था। त्वामग्ने पुष्करादधि अथर्वा निर्मंथत। 3 भूगर्भीय अग्नि। ऋग्वेद और यजुर्वेद में उल्लेख है कि अथर्वा ऋषि ने भूगर्भीय अग्नि का पता चलाया और उत्खनन के द्वारा उसे निकाला। भूगर्भीय होने के कारण इसे पुरुष अग्नि नाम दिया गया। योनिरग्ने से ज्ञात होता है कि यह अति प्रज्वलनशील है। पृथ्वी और समुद्र दोनों से इसके निकालने का उल्लेख है। क पुरुष्यो असि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथदग्ने। ख अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने समुद्रमभितः पिन्वमानम्। ग पृथिव्याः सधस्थाद् अग्निपुरुष्यं खनामः। 25 मरुतों में चुंबकीय शक्ति। ऋग्वेद में उल्लेख है कि मरुतों में चुंबकीय शक्ति है और उनसे शक्ति का विकिरण होता है। चुंबकीय शक्ति के लिए अयोद्रष्ट शब्द है, जिनकी दाढ़ में अयस चुंबकत्व है और विकिरण के लिए विधावतः दौड़ती हुई फैलती हुई शब्द है। मरुतः अयोद्रष्टान विधावतः। 26 एवया मरुत। विज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद का एवया मरुत सूक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का विस्तृत वर्णन है। एवया अति तीव्रगामी मरुत विद्युत चुंबकीय तरंगे। विज्ञान के अनुसार इन तरंगों की ये विशेषताएं हैं। एक, इन विद्युत तरंगों का संबंध विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से होता है। दो, इसके लिए विद्युत आवेश आवश्यक होता है। 3 इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 4 ये समकोण बनती हुई चलती हैं। 5 इनकी गति बहुत तीव्र है। मंत्रों में तीव्र गति के लिए ये शब्द हैं, मनोजुवह मंत्र 4 रघुपत्वानः रघुष्यदः। मंत्र 6 विद्युत आवेश के लिए शब्द है स्वविद्युतः स्वरोचिषः। 3 और 4 आत्मनिर्भर के लिए ये शब्द हैं स्वाश्रित स्वतवसः स्वयतासः। चुंबकत्व के लिए शब्द हैं अयोद्रष्टम अग्नयो न स्वविद्युतः। मंत्र 3। 27 ओजोन परत। ऋग्वेद और अथर्वेद में भूमि के चारों ओर विद्यमान ओजोन की परत का उल्लेख है। ऋग्वेद में ओजोन की परत के लिए महत उल्व शब्द आया है और उसे स्थविर अर्थात मोटी परत कहा है। अथर्वेद में इसका रंग सुनहरी बताया गया है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए बनी झिल्ली के लिए उल्व शब्द है। पृथ्वी रूपी गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए यह ओजोन परत है। क महत तदुल्वम स्थविरम तदासिद येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः ख तस्योत जायमानस्य उल्ब आसीद हिरण्ययः। 28 जल का सूत्र। ऋग्वेद में जल बनाने का सूत्र दिया है कि मित्र और वरुण के संयोग से जल बनता है। मंत्र में मित्र और वरुण शब्दों से क्रमशः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रहण है। जल का सूत्र है H2O अर्थात हाइड्रोजन गैस के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु एक पात्र में रखकर उसमें विद्युत तरंग प्रवाहित करने पर जल बनता है। ऋग्वेद के चार मंत्रों में इस विषय को और स्पष्ट किया है। मित्रम हुए पुतदक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृतांचिम साधनताम। 29 वृक्षों में अवितत्व। अथर्वेद के एक मंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि अवितत्व अर्थात रक्षक तत्व के कारण वृक्षों में हरियाली रहती है। मंत्र में क्लोरोफिल के लिए हवि शब्द अवि शब्द है। यह रक्षार्थक अवधातु से बना है। इसका अर्थ रक्षक तत्व। मंत्र में कहा है कि यह अवितत्व रित से घिरा है। इसके कारण वृक्ष वनस्पतियां हरे रहते हैं। अविर्वई नाम देवता रिते नास्ते परिवृता तस्या रूपेणे में वृक्षा हरिता हरितस्त्र जह। 30 वृक्ष शिव के मूर्त रूप। शतपथ ब्राह्मण में वृक्ष वनस्पतियों को पशुपति अर्थात शिव कहा गया है। यजुर्वेद अध्याय 16 में शिव को वृक्ष वनस्पति वन औषधि आदि का स्वामी बताया गया है। शिव विषपान करते हैं और अमृत दान करते हैं। वृक्ष वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रूपी विष पीते हैं और ऑक्सीजन O2 रूपी अमृत प्राणवायु देते हैं। संसार को जीवन रक्षक प्राणवायु O2 देने वाले वृक्ष ही हैं। ये वस्तुतः शिव के मूर्त रूप हैं। वृक्षाणाम पतये नमः ओषधीनां पतये नमः।